प्रेज लॉर्ड। आज का जो संदेश है उसका टाइटल है निष्फल पेड़। पेड़ जिस पर कोई फल ना हो। प्रभु सदाई अच्छे हैं, उन सदाई हमारे लिए अच्छे हैं। बाइबल कहते हैं कि प्रभु की जो कृपा है वही हमें तौबा करने के लिए मजबूर करती है या प्रोत्साहित करती है। प्रभु की जो करुणा और कृपा है वही है जो हमें तौबा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। याकूब उसका चैप्टर एक उसका 22 से 24, परंतु वचन पर चलने वालों बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है, जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा है। प्रभु नहीं चाहता कि हम अपने आप को भूलें। वो नहीं चाहता कि हम भूलें कि हम किस प्रकार के लोग हैं। इसका यह अर्थ है कि प्रभु चाहता है कि हम न सिर्फ उस पर विश्वास करें, न सिर्फ उसका जो वचन है उसको सुने, बल्कि सुनने के बाद उस वचन पर चले। वो हमेशा ये चाहता है कि हम हमेशा ये याद रखें कि हम उसके लोग हैं और इस दुनिया में हम उसको प्रस्तुत करते हैं। आज का जो संदेश है वो लूका चैप्टर 13 से लिया गया है। लूका चैप्टर 13 1 से 9। लूका चैप्टर 13 1 से 9। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उनके ही बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में ये कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से पाप भी थे कि उन पर ऐसे विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होंगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलो का घूमट गिरा और वे दब कर मर गए यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होंगे। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक जंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल के यह भूमि को भी क्यों रोक रहे? उसने उसको उत्तर दिया कि ये स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दो कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, सो आगे को फल तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। कुछ लोग यरूशलेम में जो आए थे उनको जो पिलातुस थे, पिलातुस ने मारकर उनके ही लहू में उनको मिलाया था। दूसरे जो 18 जो लोग थे उनको पर जो शिलोम का घूमट गिरा वे भी मर गए। तो यीशु मसीह जो है वो उनको सवाल पूछता है। कुछ लोग जो वहाँ जमे थे उनको ये सवाल पूछता हूँ कि क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? यीशु मसीह ये सवाल कर रहा है कि क्या आपको ये लगता है कि ये जो लोग जो मरे हैं कि यरूशलेम में सबसे ज्यादा पापी थे इसलिए वे मरे? सबसे ज्यादा पापी थे इसलिए उनकी मौत आई? काफी जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी अच्छी है, हमें हमारे जो कारोबार है वो अच्छा चल रहा है और हम अच्छे तंदुरुस्त और हट्टे खट्टे हैं। हो सकता है जो परमेश्वर है वो हमसे खुश है। जो दूसरे लोग जो पीड़ा में हैं, जो मुसीबतों में हैं, या फिर एक्सीडेंट हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये जो लोग हैं वो पापी हैं इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार हो गया। शायद हो सकता है कि परमेश्वर जो है उनसे कुछ नहीं है इसलिए उनकी मौत हुई। लेकिन 5वें आयात में प्रभु ये कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होंगे। प्रभु की नज़रों में सभी पापी हैं, गुनहगार हैं और हरेक ने मन फिराकर तौबा कर नेचा या नजात का नॉलेज पे आना है। अगर हम सरल भाषा में कहें तो ये है कि अगर हम मन न फिराते या हम तौबा नहीं करते तो हमारा नाश होगा। अगर अपने मन को नहीं बदलते, अगर अपने जो जीने का जो स्टाइल है अगर हम नहीं बदलते, जिस प्रकार से हम जीते हैं उस प्रकार को हम नहीं बदलते तो हमारा नाश होगा। तो जिस प्रकार से हमने याकूब में पढ़ा कि प्रभु नहीं चाहता कि हम भूले कि हम कौन हैं और हम किस प्रकार के लोग हैं। अगर हम ये कहते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं तो जाहिर है कि हमने एक अलग जिंदगी जीना है। जिंदगी जो जो अपना मन है वो बदला हुआ होना चाहिए। जिंदगी में जो फलदायक जिंदगी जीनी है। जो छठा आयात है लुका 13 का, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। अंगूर की बारी, जिस जगह में अंगूर लगाते हैं, तो बाइबल कहते हैं कि हम पेड़ जैसे हैं और अंगूर की बारी ये प्रभु की है। तो कितने खुशनसीब की बात है कि हमें प्रभु कहता है कि हम पेड़ हैं और हम उसकी बारी में लगाए हुए हैं। वचन संहिता 1 उसका 3 वचन यही कहता है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियां के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। परमेश्वर जो है वो व्यक्तिगत रूप से हमें चुनता है, एक एक करके। हमने नहीं उसे चुना, वो हमें चुनता है और उसके बाग में हमें लगाता है। जो अंगूर का बाग है वो बागे अदन के समान है, जिस बागे अदन में परमेश्वर की उपस्थिति है, वहाँ परमेश्वर के आदेश और हुक्म है और सही मार्ग में चलने का प्रभु की आवाज़ है। अंगूर का बाग इस प्रकार का है जिस प्रकार ऐसाया 5:1-5 में हम पढ़ते हैं, उसी प्रकार का बागे जिसमें अंगूर लगाया है। 5:1-5 अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाग की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाग की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक उमट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाग की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें निकल गई। अब ये यरूशलेम के निवासियों और ये यहूदा के मनुष्य मेरे और मेरी दाग की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रहेगा जो मैंने उसके लिए न किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की तब उसमें निकम्मे डाके लगे? लुका चैप्टर 13 उसका 6 आयात फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। ये जो मनुष्य है वो उसके अंगूर का बारी है, अंगूर का पेड़, अंजीर का पेड़ लगाया, उसमें फल ढूंढने वो आया लेकिन एक भी फल नहीं पाया। प्रभु जो है उन्होंने हमें भी पेड़ों समान उसके बाग में हमें भी बोया है और वो चाहता है कि हम भी उसके लिए फल लाएं। हमारे जो पेड़ है उस पे फल आए। वो चाहता है कि हम एक ऐसी जिंदगी जिए जो एक अलग हो, जो जिंदगी आम लोगों से अलग हो। उस जिंदगी में जो पुराने रीति रिवाज है वो हमें ठुकराया हुआ हो, जो पुराने हम कुछ ऐसी चीजों पे विश्वास करते हैं वो उसे भी हमें छोड़ा हुआ हो, जो ये इंसान है वो फल ढूंढने आया लेकिन इस पेड़ में वो फल एक भी नहीं मिला उसे। कहने की बात है कि प्रभु ढूंढने आता है कि हमारी जिंदगी में भी फल है या नहीं। तौबा का फल सातवीं आयत में हम पढ़ते हैं, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। जो इस बाग का जो मालिक है उसने लगातार 3 साल इस पेड़ पे फल ढूंढने आया, उसे नहीं मिला, तो आखिरकार तंग आकर ये जो मालिक है वो कहता है कि उस रखवाले को कहता है उसे काट डाल, ये फजूली इस जमीन को रोके रखा है, बेकार में इस पेड़ ने इस जगह को बांध कर रखा है, तो इसे हमें काट देना चाहिए। एफिशिएंस उसका 2 और उसका 10 आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सुझे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए करने के लिए तैयार किया। प्रभु ने हमें बनाया ताकि हम अच्छे काम करें, उसके 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 लिए फायदा के लिए काम करें। लुका चैप्टर 13 उसका 8, उसने उनको उत्तर दिया कि स्वामी इसे इस वर्ष उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी इसे इस वर्ष तो और रहने दो कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। परमेश्वर हमारा काफी इंतजार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमारे सही जिंदगी के लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया है जो कलीसिया में हमें परमेश्वर का कलाम पढ़ते हैं। परमेश्वर जो है वो काफी सबर वाला परमेश्वर है, सबर रखने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि ठीक है इसे काट मत डालो, एक और 1 साल और हम इंतजार करेंगे, तब तक मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालो। इसका यह मतलब है कि फिर से हमें मौका परमेश्वर देता है, फिर से उसकी जो करुणा है, कृपा है, प्यार है, हमें बताता है ताकि हम खोदना, चारों तरफ खोदना का ये मतलब है कि हमें दोबारा शक्ति मिले जो जरूरत है जिंदगी के लिए, सही जिंदगी के लिए वो मिले। वो ये कोशिश में हमें दोबारा खोद कर चारों तरफ खोद कर खाद डालता है। खाद डालने का ये मतलब भी कि परमेश्वर जो है हमें मौके देता है बाइबल स्टडी करने के लिए, चर्चेस जाने के लिए, ताकि हमें सही मार्गदर्शन मिले, सही जो इंस्ट्रक्शंस है, जो सही जो चीज़ें हैं वो हमें सीख सकते हैं। हर कोशिश परमेश्वर प्रभु के करता है हमारे जिंदगी में, ताकि हम उसके सही मार्ग पर चलें। लेकिन नौवीं आयत में हम पढ़ते हैं, सो आगे को फल तो भला, सो आगे तो फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। एक समय नियुक्त किया गया है, सीमा, समय की सीमा, कि अगर एक साल के बाद भी अगर इस पेड़ ने फल नहीं लाया तो उसके बाद उसे काट दिया जाएगा। तो सवाल है मेरे प्रिय दोस्तों, तो क्या हमें परमेश्वर को मजबूर करना पड़ेगा कि हमें उसके बाग से हमें निकाल दे? वक्त है कि हमारी जिंदगी को हम जांचें, वक्त है कि हमें परमेश्वर को हमारी जो जिंदगी में जो सही नहीं है उसे सही करने के लिए अनुमति दे, सही मार्ग दिखाने के लिए हमें उसे बुलाए, उसे कहे कि हमें सिखा प्रभु, हमारी जिंदगी में जो सही नहीं है, जो निष्फलता है उसे बदल दे, हमारे भावना, हमारे जो मंसूबे हैं, हमारे जो रीति रिवाज है, वक्त है कि हम बदलना है, वक्त है कि हम प्रभु के लिए फल लाए, जो प्रभु चाहता है हमारी जिंदगी में। प्रभु महान है और प्रभु दयालु है, प्रभु हमेशा चाहता है कि हमें वक्त मिले, और आज भी प्रभु ने वक्त दिया है कि हम खुद को जांचें कि क्या हम ने प्रभु के लिए फल लाया है। जो तौबा का जो फल है, जो हमारी जिंदगी है, वो क्या प्रभु के वचन के अनुसार है? क्या हमारी जिंदगी उसी प्रकार की है जिस प्रकार से हम पहले थे, या सही रीति से हमने प्रभु के वचन के अनुसार हमारी जिंदगी को बदला है? ये जांचने का अवसर है, मौका है। अगर हमें लगता है कि हमने प्रभु के लिए फल नहीं लाया, हमारी जिंदगी वैसी है, तो आज मौका है कि हम तौबा करें, मन फिराएं और कहें प्रभु कि हमें मदद करें, कि प्रभु हमें मदद करें कि हम जिंदगी को बदलना चाहते हैं, हमारे सोच को बदलना चाहते हैं, और हम प्रभु के वचन के अनुसार हमें जिंदगी को बदलना चाहते हैं। तो हम प्रार्थना करें, हे प्रभु आप महान है, दयालु है, कृपालु है, अवसर दिया है, मौका दिया है, आज भी अभी तक आपने हमें काट कर फेंक नहीं दिया, परंतु आज भी हमें आपने रखा है आपके बाग में ताकि हम फल लेकर आए, और आज हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमें मौका दो ताकि हम मन फिराएं, मदद करें प्रभु कि हम जो चीज़ें जो गलत हैं उसे छोड़ दें और आपके जो वचन हैं के अनुसार हम जिंदगी को बदले, सोच को बदले, ताकि आपको जलाल मिले, आपके नाम को जलाल मिले और हमें आशीष। ये छोटी सी दुआ हम प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।